जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं अभी सूचित भी किया गया कि कल बहुत विशेष त्यौहार है। क्या है कल? गीता जयंती। तो कल जो है ऐसा दिन है कि भगवान कृष्ण के मुख से भगवद गीता का उपदेश निकला है ना। और गीता के महात्म्य में बहुत सी अद्भुत बातें बताई गई हैं। गीता का जो महात्म्य है उसमें बताया गया है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मने स्थिता है कि गीता को ही सुगीता बनाना चाहिए। सुगीता का मतलब अच्छी प्रकार से इसको गाना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या गीता को सुगीता बनाना चाहिए। किमन्य शास्त्र विस्तरे अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मने स्थिता है जो स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकला है। भगवान जो है जो पद्मनाभ जिन की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है उन्हीं के मुख कमल से ये भगवद गीता निकला है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्तात्मने स्थितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना वेदते। भारतामृत सर्वस्वम भारत का मतलब महाभारत। महाभारत रूपी ग्रंथ का ये क्या है अमृत सर्वस्व। तो अमृत का भी जो है ये सार महाभारत जो है अमृत के समान है और उसका भी जो सार है सर्वस्व है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्तराद विनिश्रितम विष्णु के मुख से निकला है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना वेदते गीता रूपी गंगा जल को पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। और इसको पिया कैसे जाता है कानों से पिया जाता है ना। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना वेदते इसमें इसमें देखा है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सर्वोपनिषदो गावो बहुत सुंदर वर्णन है। ये महात्मा का बड़ा सुंदर वर्णन है। सर्व उपनिषद गावो है कुल मिलाकर के उपनिषद कितनी है 108 108 उपनिषद मुख्य हैं और भी ज्यादा उपनिषद हैं। तो सर्व उपनिषद गौओं के समान है। आप सुन रहे सभी उपनिषद गाय हैं और इनको दोहन करने वाले हैं दोग्धा गोपाल नंदना गोपाल नंदन कृष्ण है ना। तो बचपन में वो नंद की गायें दोहते थे तो उनको गाय दोहने का बड़ा अभ्यास है ना। तो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सहा सुधीर भोक्ता। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उन्होंने भी दोहन का कार्य किया क्योंकि अभ्यास है गाय दोहने का। बचपन में ही जो है कृष्ण का अभ्यास गाय दोहने का था। तो गाय जो है बचपन में दोहते थे हाँ तो वही उसी अभ्यास के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उन्होंने गाय दोहने का काम किया है ना। यहाँ पर गाय दूसरे प्रकार के गाँव हैं है? कौन से गाँव में है उपनिषद है तो समत उपनिषद है गाँव में है और उनको दोहन किया कृष्ण ने क्योंकि ये गोपाल नंदन है ना, गोपाल नंदन क्या कर रहे हैं, गाय दोहेंगे और क्या करेंगे, एक ही काम है, दोहने का ही काम है। तो दोगा गोपाल नंदन है ना, तो गाय दोहने के लिए जो होता है, मतलब दोहने वाला होता है, तो कैसे दोहता है, बछड़ा गाय के आगे बछड़ा रखते हैं है ना, तभी गाय दूध देगी है ना। तो बछड़ा किसको बनाया, पार्थो वत्सा, अर्जुन को बछड़ा बनाया, अर्जुन को बछड़ा बनाया है ना। लेकिन जो गाय है वो दूध जो देती है वो बछड़ा तो पीता ही है ना, लेकिन बाकी लोग भी पीते हैं है ना। तो पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता, जिनकी अच्छी बुद्धि है वो इसको इसका आस्वादन करते हैं, इस दूध का है। दुग्धम गीतामृतम महत, और महान अमृत जो गीता है वो दूध है। तो सोचिए कितना अच्छा इसका गीता महात्म्य में बताया गया है, कितना सुंदर महात्म्य है गीता का, कि जितनी उपनिषद हैं उनका जो दूध है ना, इकट्ठा हुआ है किस रूप में, गीता के रूप में है ना। उसी प्रकार से उपनिषद बहुत विस्तृत हैं, बड़े बड़े बहुत मंत्र हैं उपनिषदों में है ना। जैसे गाय, तो गाय का जो है कितना बड़ा आकार होता है, उसका जो दूध निकलता है वो थोड़ा ही होता है ना गाय के आकार की तुलना में है ना। उसी प्रकार से उपनिषद बहुत उपनिषद हैं है ना, उनमें बहुत मंत्र हैं, लेकिन उनका जो दूध है वो गीता के रूप में इकट्ठा किया है किसने, कृष्णा ने दोहन करके इकट्ठा किया है ना। तो इस प्रकार दोहने की शक्ति किसके अंदर है, कृष्ण के अंदर ही है, तो कृष्ण ही दोह सकते हैं है ना। तो पार्थो वत्सा, अर्जुन को बछड़ा बनाया, तो अर्जुन जो है बछड़ा है, तो बछड़ा कितना दूध पिएगा, ज़्यादा दूध तो पी नहीं सकता, गाय तो बहुत दूध देती है ना। तो अर्जुन की जितनी आवश्यकता थी वो तो जो है ना पूरी हो गई, लेकिन कृष्ण जो है जो दोहन किया वो किन के लिए दोहन किया, सुधीर जिनकी बुद्धि अच्छी है, दुर्धम गीतामृतम महत है ना। और एक श्लोक है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम देने देने, जल से स्नान करने से शरीर का मल तो दूर होता है, शरीर का मैल दूर होता है जल के स्नान के द्वारा, लेकिन ये स्नान दिने दिने यानी प्रतिदिन करना पड़ता है। एक दिन स्नान करने से मतलब पर्याप्त नहीं है कि भाई एक दिन स्नान कर लिया चलो बस हमेशा के लिए मैल दूर हो गया, रोज स्नान करना पड़ता है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम देने देने सकृत गीताम भस्य स्नानम संसार मलनाशनम, लेकिन गीता का जो स्नान है, गीता के ज्ञान में अगर स्नान कर लिया एक बार भी तो संसार का मल हमेशा के लिए दूर हो जाता है ना। तो ये जो है मतलब गीता के महात्म की बात बताई गई है। और एक श्लोक है गीता के महात्म का जिसमें बताया गया है, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रेता अपमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोक आदि वर्जिता। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम, ये जो गीता शास्त्र है ये पवित्र है, जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा प्रेता, प्रेता का मतलब है प्रीतिपूर्वक पढ़ेगा, ये जो गीता शास्त्र है ये बहुत पवित्र है, इसको जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक पढ़ेगा यह पठेत प्रेता अपमान विष्णु पदम अवाप्नोति, तो विष्णु का पद वो प्राप्त करता है। और विष्णु के पद में क्या विशेषता है, भय शोक आदि वर्जिता, उसमें किसी प्रकार का भय और शोक नहीं है। बाकी जितने भी संसार हैं हर जगह भय बना हुआ है और शोक बना हुआ है, भय शोक द्वेष क्रोध लोभ ये सब बने हुए हैं, भय शोक आदि वर्जिता। तो गीता के महात्म तो बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, और विशेष रूप से ये जो भगवद गीता यथारूप है इसमें हम चर्चा करना चाहते हैं कि प्रभुपाद ने इसको नाम दिया क्या, भगवद गीता यथारूप। हाँ इसकी प्रशंसा, जो बड़े बड़े विद्वान हैं इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? भगवद गीता थारूप की। तो भगवद गीता की टीका तो बहुत लोगों ने लिखी है, हाँ, लेकिन जो प्रभुपाद ने लिखी है टीका, इसको क्या नाम दिया है? भगवद गीता थारूप, है ना। इसकी प्रशंसा में बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है, हाँ। इसमें लिखा है कि संस्करण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए बोल रहे हैं। एक विद्वान है, विदेश में है, जो धार्मिक अध्ययन विभाग के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर थॉमस, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो गीता यथारूप है, ये जो गीता यथारूप है, ये क्या है, ये गीता के विषय में और भक्ति के विषय में प्राप्त जितने ग्रंथ हैं सबसे श्रेष्ठ है। सोचिए क्या प्रशंसा है इस गीता की। गीता के विषय में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ, और भक्ति के विषय में जितने ग्रंथ उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, है ना। तो बाकी बहुत सी जो गीता की टीकाएं लिखी हैं विद्वानों ने, है ना, तो उसमें उन्होंने भक्ति को महत्व नहीं दिया, भक्ति को महत्व नहीं दिया, है ना। गीता की ऐसी टीकाएं लिखी हैं जिससे कोई भक्त नहीं बनता, है ना। जबकि कृष्ण गीता में जो बात बोल रहे हैं वो भक्त बनाने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मद भक्तो भाव, मेरे भक्त बनो। लेकिन गीता की टीकाएं जिन विद्वानों ने लिखी हैं उनको पढ़कर कोई भक्त नहीं बनता, कोई भक्त नहीं बनता, है ना। क्या बनते हैं? भगवान। सब भगवान बनना चाहते हैं, है ना, कि हम भगवान हैं, हम भगवान बन जाएंगे। तो ऐसी व्याख्या है, हा? जो कि गीता के संदेश को उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया। ऐसी टीकाएं हैं, है ना। तो कोई भक्त नहीं बनता, कोई कृष्ण की शरण नहीं लेता, है ना। ऐसी टीकाएं हैं गीता की, है ना। जैसे मैंने भी पढ़ी गीता प्रेस गोरखपुर की, गीता पढ़ी, है ना। तो उसमें कहीं तो भक्त बनने के लिए भी बात आई है, और कहीं पर आई है कि एक बन जाना है भगवान के साथ, एक बन जाना है। तो ऐसे अनुवाद, इस तरह के अनुवाद होते हैं, तो उसमें फिर कोई व्यक्ति निश्चित नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भक्त बनना है या भगवान के साथ एक होना, है ना। तो इसलिए ये भगवद गीता यथारूप है। इसमें प्रत्येक श्लोक की व्याख्या प्रभुपाद ने इस तरह से की है कि हमें क्या करना है, भगवान के भक्त ही बनना है। हमें भगवान नहीं बनना, भगवान के भक्त बनना है। भगवान बनना एक बहुत बड़ा अज्ञान है, हम ना भगवान है ना हम भगवान बन सकते हैं, हैं। इसलिए भगवान बनने की इच्छा करना भी बहुत बड़ा अज्ञान है, है ना। तो इसलिए भगवद गीता थारूप ही जो प्रभुपाद ने लिखी है, इसमें एक ही दिशा मिलती है हमेशा, हमेशा एक दिशा मिलती है कि हमें क्या करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, हमें कृष्ण की शरण लेनी है, है ना। ये प्रभुपाद द्वारा इसमें प्रशंसा में लिखा है, प्रभुपाद द्वारा किया गया ये अनुवाद शाब्दिक यथार्थता और धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। ये क्या है? आदर्श मिश्रण, बहुत बढ़िया मिश्रण है। किस चीज का है? एक तो शाब्दिक यथार्थता, शब्द की यथार्थता, शब्द प्रभुपाद ने समझाए हैं इसमें। गीता के श्लोकों के जो शब्द हैं इनकी प्रभुपाद ने व्याख्या की है, एक एक शब्द का अर्थ भी दिया है, हाँ, और उसकी व्याख्या की है। शाब्दिक यथार्थता और धार्मिक अंतर्दृष्टि, और इसमें अंदर गहराई से जो तात्पर्य दिए हैं, ये भगवान कृष्ण के हृदय के अंदर से जो भाव हैं वो निकाल करके दिए प्रभुपाद ने, है ना। तो ये आदर्श मिश्रण है। फिर एक दूसरे विद्वान है, जो कि थॉमस मर्टन है, थॉमस मर्टन ये विदेशी, देखिए इस गीता की प्रशंसा विदेशी विद्वान लोग कर रहे हैं विदेश में, है ना। इसमें क्या लिखा है? गीता को विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद और टीका स्वामी भक्ति वेदांत ने जो लिखी है, इससे पश्चिमी जगत को स्मरण दिलाया है उन्होंने, कि अगर इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? आत्म विनाश। अगर इस गीता के इस संदेश को नहीं स्वीकार करें तो विदेशों में लोग कहाँ जा रहे हैं? सर्वनाश की ओर जा रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है संसार की रक्षा की बहुत बड़ी, ऐसी गहराई कि मैंने हमारे चारित्रिक विकास असंभव है। फिर एक और विद्वान है, उन्होंने लिखा है पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि भगवद गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है अभी तो विषय वस्तु के लिए आंतरिक सहानुभूति और शब्द चातुरी भी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या लिखा है कि अभी गीता का अगर अनुवाद करना है तो इसमें आवश्यकता है, पहली बात क्या, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तो भगवान ने गीता सुनाई है संस्कृत भाषा में, है ना। तो संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति होना चाहिए कि मतलब कृष्ण जो बोलना चाहते हैं तो उसमें अपनी भी अनुभूति होना चाहिए, सह अनुभूति, साथ साथ अनुभूति होना चाहिए ना। जो व्यक्ति गीता की टीका लिखे उसको अनुभूति होना चाहिए इस आंतरिक विषय में, गीता के विषय में, और दोनों अनुभूति नहीं की है तो वो जो कुछ भी लिखते हैं उससे कोई जो है गीता को नहीं समझ पाता है, कृष्ण के संदेश को नहीं समझ पाता है ना। तो सहानुभूति, आंतरिक सहानुभूति और शब्द चातुरी भी चाहिए, साथ साथ शब्दों की चातुरी भी होना चाहिए। मान लो आपको अनुभूति तो हो गई, अगर शब्द नहीं है आपके पास में तो आप कैसे उसको व्यक्त करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद के अंदर दोनों चीजें हैं, तीन चीजें हैं, संस्कृत भाषा का ज्ञान, गीता का जो है उन्होंने जो यथारूप लिखी है गीता, है ना, इसमें संस्कृत भाषा का ज्ञान भी प्रभुपाद को है, और दूसरा विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति, आंतरिक अनुभूति है प्रभुपाद को, और तीसरा क्या है, शब्द चातुर्य, शब्द की चतुराई, शब्द की चतुराई बहुत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों की चतुराई के द्वारा आपको जो अनुभूति है वो आप प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो शब्द चातुर्य, ये तीन चीजें है ना चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अति सहानुभूतिपूर्ण है। तो इस विद्वान ने देखो, विदेशी विद्वान जो है स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि प्रभुपाद का जो है क्या है, इस गीता की विषय वस्तु के प्रति अति सहानुभूतिपूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। तो भक्ति की परंपरा तो चली आ रही है, भगवान कृष्ण से भक्ति परंपरा चली आ रही है, है ना, लेकिन इसको नया अर्थ प्रदान किया, नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है, मतलब नए नए तर्कों के द्वारा प्रभुपाद ने गीता के जो है विषय को समझाया है नए तर्कों के द्वारा, क्योंकि इस समय का जो युग है तो इस युग के अनुसार जो घटनाएं होती हैं उनके द्वारा प्रभुपाद ने जो है गीता को समझाया है। तो ये प्रभुपाद का ये कार्य है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया, नया अर्थ प्रदान किया। अब गीता का कोई भी नया अर्थ नहीं दिया प्रभुपाद ने, ये विद्वान कह रहे हैं कि गीता को नया अर्थ प्रदान किया प्रभुपाद ने। तो नया अर्थ क्या है? वही अर्थ जो पुराना अर्थ है वही नया है, आप समझे, क्योंकि गीता का जो असली अर्थ है वो कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया और नित्य नूतन इसमें जो है मतलब रस है, इसे नया अर्थ कहा गया कि गीता को नया अर्थ दिया प्रभुपाद ने। नया अर्थ का मतलब क्या है? जो पहले से जो चला आ रहा है भगवान कृष्ण ने जो समझाई बात, तो वही नया है, है ना, क्योंकि बाकी जो अर्थ जो अपने अपने दिमाग से लोग निकालते हैं अर्थ है, वो सब जो है मतलब बेकार होते हैं, उनमें कोई रस नहीं मिलता, है ना। तो नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। विद्यार्थी मतलब जो गीता के अर्थ को समझना चाहते हैं, गीता के विद्यार्थी, तो बहुत से गीता के विद्यार्थी हैं लेकिन उनको गीता का सही अर्थ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज के समाज को इस गीता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो गीता के विद्यार्थी हैं, जो गीता की विद्या का अर्थ जानना चाहते हैं, है, तो उनके लिए प्रभुपाद ने, स्वामी जी ने यानी प्रभुपाद ने असली सेवा कार्य किया है। संसार में बहुत से विद्यार्थी हैं, है? विद्या का अर्थ जाना, गीता की विद्या का जो अर्थ जानना चाहते हैं, फिर लिखा उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। देखो विदेशी विद्वान प्रभुपाद की प्रशंसा कर रहे हैं, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। इसमें सबसे पीछे जो प्रशंसा लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे पहले भारत के, तो उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है। लिखा है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। लाल बहादुर शास्त्री जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी प्रशंसा की, क्या कि मूल्यवान कार्य कर रहे हैं। उस समय 1965 में थे ना, लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत के प्रधानमंत्री थे और प्रभुपाद उनसे मिलने गए थे, है ना। तो उन्होंने अपने हाथ से लेकर के प्रशंसा दी, क्या कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति देवानंद स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, पुस्तकें, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है पुस्तकें दी, भगवद गीता की जो टीका है और भी जो दूसरी पुस्तकें दी हैं प्रभुपाद ने, तो ये जो है मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, है? कि शरीर तो नहीं रहा, है? शरीर तो नहीं रहता किसी का, लेकिन ये जो अपनी वाणी उन्होंने हमें दे दी है तो ये हमेशा के लिए उनका संग हमें प्राप्त हो रहा है, उनका संदेश हमें प्राप्त हो रहा है और इससे मानव जाति का उद्धार हमेशा होता रहेगा, है ना। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बांटना है, ये गीता की पुस्तकें हमें बांटना है, लोगों को देना है। अगर आप रक्षा करना चाहते हैं, अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो इनको आप पढ़िए सुनिए, है ना। और जिसकी भी रक्षा करना चाहते हैं या सबकी रक्षा करना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को बांटिए, है ना। ये पुस्तकों को बांटना ये बहुत मतलब बड़ा राहत कार्य है, है ना। क्योंकि कलयुग जो है बड़ा घोर युग होता है, बहुत ही भयानक युग है कलयुग, तो इसमें अज्ञान ही अज्ञान है और लोग जो है अज्ञान में कितने कितने प्रकार के पाप कर रहे हैं, तो बचेंगे थोड़ी उस पाप के दंड से, बचेंगे नहीं कि अज्ञान में कर रहे हैं तो पाप उनको नहीं लगेगा, लगेगा पाप। तो उस अज्ञान से बचाने के लिए ये प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं ये रक्षा का कार्य करती हैं, उनका ज्ञान दूर करेंगे, है ना। तो प्रभुपाद की पुस्तकें इसलिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि इनसे रक्षा होगी। इसी में जो है और भी मैं इसमें से कुछ बीच बीच से कुछ पढ़ के सुनाऊंगा कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। भगवत गीता के अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है, सुनिए ध्यान से, सब लोग सुन रहे हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रभुपाद ने इस भगवत गीता का यह अनुवाद क्यों लिखा, क्योंकि भगवत गीता के अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि अपनी विचारधारा और सिद्धांत को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। आप समझ रहे हैं, अपनी विचारधारा को समझाने के लिए कृष्ण को तो ताक में रख देते हैं। अब ये तो कृष्ण की विचारधारा है, भगवद गीता में कृष्ण ने अपने विचार दिए हैं, लेकिन वे अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, कृष्ण को ताक में रख देते हैं। कृष्ण ने जो है गीता में जो अपने विचार दिए हैं तो उनको तो अलग कर दिया, कृष्ण के विचारों को अलग कर दिया, अपने विचार घोषित दिए। आप समझ रहे हैं, अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि परंपरा के द्वारा तो उन्होंने गीता के संदेश को सुना नहीं, जो भगवान कृष्ण चली आ रही है शिष्य परंपरा उसमें गीता का संदेश सुना नहीं, तो जब अनुवाद करेंगे तो वो अपने विचारों को घुसेड़ेंगे और कृष्ण के विचारों को निकालते हैं, तो कृष्ण को निकाल दिया, गीता में से कृष्ण को ही निकाल दिया तब क्या बचा? कुछ नहीं। कि गीता में जो कुछ कहा है कृष्ण ने अपने ही बारे में कहा है, हैं? कृष्ण की महिमा है। भगवद गीता क्या है? कृष्ण की ही महिमा है, हैं? और कृष्ण को ही निकाल दिया और हम विचार घुसेड़ दिए तो गीता में फिर बचा क्या? वो तो फिर जहर बन गया कि नहीं? ये फिर गीता क्या बन गई? जहर बन गई। अपने विचार घुसेड़ दिए और कृष्ण के विचार निकाल दिए। तो अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। आप समझ रहे? अभी अपने विचार गीता में क्यों घुसेड़ते हैं? आपको आप समझ रहे क्यों अपने विचार गीता में क्यों घुसेड़ते हैं? अगर अपने विचार स्वयं देंगे तो लोग नहीं स्वीकार करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। भाई हाँ, हम आपके विचार नहीं मानते, हम आपके विचार नहीं मानते। तो वे क्या करते हैं कि अपने विचार गीता में घुसेड़ देते हैं, तो गीता के नाम पर उनके विचार जो है लोग ले लेते हैं कि भाई तो गीता के विचार हैं। आप समझ रहे? तो ये मतलब एक फायदा उठाते हैं वो लोग, गीता का फायदा उठाते हैं। ये गीता जो है मतलब बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो गीता के नाम पर अपने विचार जो है लोगों को देते हैं तो लोग सोचते हैं हाँ भाई ये तो गीता के विचार हैं, है ना? और लोगों को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। आप समझ रहे? कृष्ण कितना बड़ा अपराध करते हैं। कृष्ण ने गीता में जो बात बताई है तो कृष्ण के नाम पर, गीता के नाम पर वे अपनी बात बताते हैं, है ना? कितना बड़ा अन्याय है। आप समझ रहे? जैसे मैंने आपके लिए कुछ संदेशा दिया है, है ना? तो तीसरे व्यक्ति को मैंने बोला है कि भाई हाँ वो आपको बता दे, तो तीसरा व्यक्ति जो है क्या करे, मेरी बात को ही बदल करके कुछ दूसरी बात, अपनी बात मतलब बोल दे कि प्रभु जी ने ये कहा, गलत है ना? तो मैंने तो कुछ बोला इनको कि भाई ये आपको बता दें, मैंने जो बोला है, है ना? और ये जो है उस बात को बदल करके आपको कुछ और बात बताते हैं, है? और ये कहेंगे कि प्रभु जी ने ये बोला, कितना गलत है कि नहीं? इसी प्रकार से जो है गीता के नाम पर और कृष्ण के नाम पर लोग बहुत उल्टी उल्टी जो है बातें हैं अपनी जो है फैला रहे हैं, और जो है जो सामान्य जनता है उसको पता नहीं, उसको पता नहीं, वो सोचते हैं हाँ ये गीता, यही गीता में लिखा है, यही गीता की बात है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवद गीता के अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं, है? वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बनाते हैं, है? किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का, या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। तो वे लोग जो है कृष्ण को क्या मानते हैं, है? इसको ये इतिहास है, ये जो है एक इतिहास है, लेकिन वे इसको क्या मानते हैं कि ये एक रूपक है। ये भगवद गीता एक ऐतिहासिक घटना है। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, उसमें भगवान ने उपदेश दिया था गीता का। लेकिन वे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसी टीका लिखी है गीता की कि कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, हा? कोई कौरव नहीं हुए, ना कोई पांडव हुए, ना कोई कृष्ण हुए, है? ये गीता क्या है? ये गीता अपने ही अंदर हो रही है, है? आत्मा, हमारी आत्मा ही कृष्ण है और हमारी पांच इंद्रियां ही पांच पांडव हैं, है? और हमारा मन ही अर्जुन है, है? और इसी के अंदर ही जो है गीता का उपदेश हो रहा है। आप सुन रहे हैं, है? तो ये अपराध है, ये गलत है, ये गलत है। और लगता है कि कितनी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, क्या लगता है कि बड़ी अच्छी व्याख्या कर रहे हैं, हाँ? वो कहते हैं कुरुक्षेत्र, हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और गीता में जो कृष्ण की बात आई है वो कृष्ण कहाँ पर है, हमारे अंदर आत्मा ही कृष्ण है, बड़ा अच्छा लगता है, हैं? और अर्जुन, अर्जुन की बात आई, अर्जुन कौन है? हमारा मन ही अर्जुन है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हैं? और पांच पांडव कौन है? हमारी पांच इंद्रियां पांच पांडव हैं, वाह बहुत बढ़िया, हैं? और कौरव कौन है? तो हमारी आसुरी प्रवृत्तियां ही कौरव हैं। तो फिर युद्ध किसका किसके बीच में हो रहा है? वही हमारे जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ये कौरव हैं, इनका युद्ध हो रहा है पांडवों के साथ में, हमारी इंद्रियों के साथ में, ये युद्ध है और कोई युद्ध नहीं हुआ, है? महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने उसको मतलब मिटा दिया, गीता की इस घटना को ही मिटा दिया, ऐतिहासिक घटना को ही मिटा दिया, है ना? तो कितना बड़ा ज्ञान है, है ना? तो इसमें ये लिखा है, महाभारत इतिहास को काल्पनिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बनाते हैं, किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का, या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भगवद गीता के लक्ष्य और विषय वस्तु दोनों हैं। गीता में क्या है कि कृष्ण ही विषय वस्तु है और लक्ष्य भी कृष्ण ही है। भगवद गीता में अगर कुछ चर्चा हुई है वो कृष्ण की ही चर्चा हुई है और लक्ष्य भी कृष्ण ही है, प्राप्त करना है किसको? कृष्ण को ही प्राप्त करना है। तो भगवद गीता का जो विषय वस्तु है वो कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं है, किसी दूसरे का वर्णन नहीं है भगवद गीता में, है ना? और प्राप्त भी करना है भगवद गीता में किसको? कृष्ण को ही, कृष्ण ही लक्ष्य है, विषय वस्तु भी कृष्ण है और लक्ष्य भी कृष्ण है, लेकिन वो जो है कृष्ण को निकाल देते हैं, हा? तो फिर क्या आ रहा? फिर तो जीरो हो गया, कृष्ण को निकाल दिया अगर गीता में से तो क्या हो गया, क्या बचा? जीरो, है ना, शून्य, है ना, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसी लोग जो है व्याख्याएं करते हैं गीता की, है ना? तो यहाँ आगे लिखा है, अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर ले जाता है। ये जो अनुवाद और भाष्य, भाष्य मतलब तात्पर्य, इस श्लोक के जो तात्पर्य हैं, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण की ओर ले जाते हैं। इस भगवद गीता था रूप में जो अनुवाद हैं और तात्पर्य हैं ये कृष्ण की ओर ले जाते हैं पाठक को। जो पढ़ता है पाठक तो कृष्ण की ओर जाता है, कृष्ण की ओर ले जाते हैं, है ना? दूसरा विषय है ही नहीं कृष्ण के अलावा, है ना? तो कृष्ण की ओर ले जाते हैं, तो पाठक फिर कृष्ण से दूर नहीं जाता है। अगर आप भगवद गीता के श्लोकों के अनुवाद पढ़ेंगे या तात्पर्य पढ़ेंगे जो प्रभुपाद ने दिए हैं, तब आप कृष्ण से दूर नहीं जाएंगे, है ना? किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं है कि भाई नहीं नहीं यहाँ तो कृष्ण कुछ दूसरी बात बोल रहे हैं, यहाँ तो जो है कृष्ण की बात नहीं है, कुछ दूसरी बातें हैं, नहीं, प्रत्येक श्लोक में कृष्ण की ही बात है, है ना? आगे, इस दृष्टि से भगवद गीता यथा रूप अनुपम है। क्या है ये? अनुपम, अनुपम माने इसकी उपमा नहीं है, इसकी तुलना ही नहीं है किसी के साथ, अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है किस तरह ये पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतः यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जिस महान शास्त्र को सही रूप में प्रस्तुत करता है, सही रूप में। आप सुन रहे कि गीता के बहुत अनुवाद हैं, गीता के तो बहुत टीका है, लेकिन कोई कृष्ण का भक्त नहीं बनता, कोई कृष्ण की शरण नहीं लेता, है? और लोग जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान बने फिरते हैं, लोग बड़े विद्वान बने फिरते हैं लेकिन वो कृष्ण के भक्त नहीं बनते, हैं? और क्या सोचते हैं हम ही भगवान हैं या हम भगवान बन जाएंगे, है? तो इस तरह से जो है इसको समझना है। फिर इसमें आमुख के अंदर लिखा है, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक सहज और दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता थरू पर आधारित है। ये प्रभुपाद ने पूरे संसार में जो कृष्ण भावनात्मक आंदोलन जो फैलाया है, है ये क्या है, ये भगवत गीता थरू पर आधारित है। तो पूरा जो आंदोलन पूरे संसार में जो फैल रहा है, इसका आधारभूत जो ग्रंथ है वो कौन है, क्या है, भगवत गीता थरू आधारित है ना। तो इतना बड़ा आंदोलन अभी फैल रहा है पूरे संसार, पूरे विश्व में कितने लोग भक्त बन रहे हैं, जीवन बदल रहा है लोगों का, है ना, उसका आधार क्या है, भगवत गीता थारू। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग जैसे खड़ी होती है तो उसकी नींव बहुत मजबूत बनाई जाती है ना। तो किसी भी भवन को जो है अगर आप बनाते हैं और बहुत बड़ा बनाते हैं तो मजबूत उतनी ही मजबूत होना, नींव उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो क्या फायदा होगा, इतना बड़ा भवन बनाया सब ध्वस्त हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से भगवत गीता जो है नींव है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नींव है, है ना, आधार है, है ना। ये संपूर्ण जगत में विशेषता, ये प्रभुपाद ही लिख रहे हैं ना, हाँ ये प्रभुपाद ही लिख रहे हैं, ये आमुख लिखा है ना, इस आमुख में प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ? ये संपूर्ण जगत में विशेषता नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। क्या चीज बहुत लोकप्रिय हो रहा है संपूर्ण जगत में, भगवद्गीता, भगवद्गीता थारू, भगवद्गीता यथारू, हाँ विशेषता नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्राचीन पीढ़ी मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको भी रुचि पैदा हो रही है इसमें, है ना, रुचि मिलती है, क्योंकि प्रत्येक अनुवाद और प्रत्येक तात्पर्य में कृष्ण की चर्चा आती है ना, तो लोगों को रुचि पैदा होती है और विषय सरल बन जाता है। जहां कृष्ण की चर्चा आती है, कृष्ण की महिमा आती है, तो स्वतः जीव को जो है रस मिलने लगता है। तो इसलिए भगवत गीता था रूप प्राचीन पीढ़ी में भी सुंदर रुचि प्रदान कर रहा है ना, सुरुचि प्रदान करने वाला है, और नई पीढ़ी में लोकप्रिय है, लोकप्रिय हो गया है, जो नई युवा पीढ़ी है वो उसमें भी लोकप्रिय हो गया ये गीता, है ना। प्राचीन मतलब जो पुरानी पीढ़ी है ना, तो प्राचीन पीढ़ी मतलब जो बूढ़े लोग हैं, तो बूढ़े लोग में भी जो है इसमें बहुत मतलब रुचि, बूढ़े लोगों को भी बहुत रुचि हो रही है इस गीता में। जैसे बम्बई में एक घर में एक भक्त ने जो है दरवाजा खटखटाया, सुन रहे सब लोग, एक भक्त ने जो है दरवाजा खटखटाया तो कोई खोल नहीं रहा था दरवाजा। अब भगवान है हृदय के अंदर, उस भक्त के हृदय के अंदर, तो वही उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि वो भक्त जो है वो उसमें जो है मतलब कई फ्लैट थे तो उसी एक एक ही उसमें जो दरवाजे में बार बार खटखटा रहा है ना। तो बहुत देर के बाद एक माताजी ने खोला दरवाजा, तो उस भक्त ने कहा कि मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आया हूँ, ये भगवत गीता था रूप है। तो माताजी ने गीता की किताब ली, खोली और देखा, और फिर उसने जो है कहा कि तुम अंदर आओ। तो भक्त जो है डर गया कि माताजी अंदर क्यों बुला रहे हैं, तो उसने फिर जो है अंदर जाकर के दिखाया कि उसने आत्महत्या करने के लिए पंखे में जो है रस्सी बांधी हुई थी और कुर्सी है, कुर्सी में जो है मतलब खड़ी होकर के वो फांसी लगाने वाली थी अपनी, और उसने कहा कि आपने मेरी रक्षा कर ली, ये गीता आप मेरे लिए लाए हैं, मैं भी आत्महत्या करने वाली थी, है ना। तो देखो ऐसे मतलब घटनाएं होती हैं भगवद गीता से जो है मतलब ऐसी रक्षा होती है। विदेशों में तो लोग आत्महत्या मतलब एक बड़ा सामान्य कार्य बन गया है, आत्महत्या तो बड़ी सामान्य हो गई है विदेशों में, है ना। तो एक युवक भी था, युवक भी जो है आत्महत्या करना चाहता था, उसने जो है विचार किया आत्महत्या करने का, तो तो आत्महत्या की सरल विधियां भी वहां पर सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि भाई अगर आत्महत्या करना चाहो तो सरल विधि क्या है, सरल विधि से आप आत्महत्या कर सकते हो। वहां इसकी भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। तो सरल विधि क्या है आत्महत्या की, कि अपनी गाड़ी के अंदर एग्जॉस्ट फैन जो है अंदर की साइड में कर लो, है ना, और गाड़ी चालू कर दो तो जितनी भी जो गैस निकलेगी ना जो बाहर जाती है अंदर रहेगी, और गाड़ी की सब खिड़कियां बंद कर लो तो आप आत्महत्या बड़ी आसानी से आप कर सकते हो इस तरह से। तो उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी जो है एक जगह खड़ी की और गाड़ी स्टार्ट कर ली, एग्जॉस्ट पाइप जो है अंदर कर लिया और सब खिड़कियां बंद कर ली आत्महत्या करने के लिए। तो अब थोड़ा उसमें टाइम तो लगता ही है ना, मरने में कुछ टाइम तो लगता ही है। तो तब तक उसने गाड़ी में देखा कि कोई किताब अगर हो तो मैं किताब पढ़ूं, तो प्रभुपाद की किताब उसकी गाड़ी में रखी। कैसे, मतलब कुछ किसी भक्त ने जबरदस्ती दे दी होगी तो रख ली, और उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं पढ़ूंगा या पढ़ना है, वो रखी थी। तो उसने ऐसी किताब उठा करके उसने पढ़ना शुरू किया, और जैसे पढ़ना शुरू किया उसको मनुष्य जीवन का महत्व पता चला कि मनुष्य का जीवन किस लिए मुझे प्राप्त हुआ है, मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्महत्या का विचार उसने छोड़ दिया। हरि बोल। प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, मतलब अगर ऐसी घटनाएं अगर एक भी देखी गई है तो ऐसी कितनी घटनाएं होंगी जिनका कि हमें पता नहीं हो, पूरी दुनिया में लोगों के जीवन की रक्षा हो रही है, कितनी घटनाएं होंगी ऐसी, है ना, बहुत सी घटनाएं हैं इस तरह की। तो ये जो है मतलब जो है प्रभुपाद की ग्रंथ हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता और पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। लोग जो है इन पुस्तकों को पढ़ करके, लॉस एंजलिस में अनेक माताएं और पिता मेरे पास ये कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमरीकी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मैंने अमरीका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं प्रभुपाद अमेरिका में गए कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाने के लिए, तो वहां के जो पिता माता लोग हैं वो प्रभुपाद की प्रशंसा करके, अमेरिका बहुत भाग्यशाली है कि आप यहाँ पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला रहे हैं। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो कृष्ण ही जो है प्रारंभ किया है। आदि प्रवर्तक कौन है, भगवान कृष्ण है। क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा ये मानव समाज में चला आ रहा है, तो भगवान कृष्ण ही है ना, और ये गीता के आधार पर है ये आंदोलन। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मतलब प्रभुपाद अपना गुण कुछ भी नहीं मान रहे हैं, है ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मेरा अगर कुछ गुण है तो क्या है कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता यथा रूप में प्रस्तुत की है। क्या प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैंने जो गीता का अर्थ जो दिया है उसमें कुछ मिलाया नहीं है, मेरा अगर कुछ गुण है तो केवल इतने हैं कि मैंने कुछ मिलावट नहीं की है, यथा रूप में मिलावट नहीं की है, यथा रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवद गीता के जितने भी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास देखते हैं। जितने व्याख्याकार हुए हैं गीता के उन्होंने क्या किया है, अपने विचार उसमें डाल दिए, है ना। तो ये जो है किंतु भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना रहा है। प्रभुपाद क्या करें, बस हमने केवल इतना ही प्रयास किया है कि कृष्ण की बात पहुंचा दूं, कृष्ण की बात ही केवल समझाने का मेरा प्रयास रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिज्ञ दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को। जो राजनीतिज्ञ होते हैं अपनी राजनीति की बातें घुसेड़ते हैं, गीता में है ना। तो इस तरह से जो है अपने जो विचारक होते हैं अपने विचार घुसेड़ते हैं, सब अपने अपने विचार उसमें घुसेड़ते हैं। तो प्रभुपाद क्या करें कि मैंने जो है ऐसा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने इसमें है, क्योंकि इनमें चाहे जितना, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। इसलिए गीता की टीका में बहुत ज्ञान दिया उन लोगों ने, लेकिन कृष्ण का विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। जितने विद्वान हुए हैं गीता की टीकाएं लिखी उन्होंने और ज्ञान की बातें बहुत लिखी हैं, लेकिन कृष्ण के विषय में कुछ ज्ञान नहीं मिलता उनकी गीता से। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, अब गीता में कृष्ण साफ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, मुझमें मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अब कृष्ण तो इतना साफ साफ कह रहे हो, बार बार कह रहे हैं मुझे मेरी मेरे मेरी, ये सब प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उल्टा अर्थ निकालते हैं। गीता में कृष्ण ने इससे और स्पष्ट क्या हो सकता है, कृष्ण कह रहे हैं मेरे मुझे मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इससे ज्यादा सरल और स्पष्ट कुछ हो सकता है, है? और हर बार मेरा मुझे मुझको इन शब्दों का प्रयोग भी कर रहे हैं कि एक बात ना समझाए तो दूसरी बार, दूसरी बार समझाए तो तीसरी बार समझें, और इसके बावजूद भी जो है उल्टा अर्थ निकालते हैं गीता का, है ना। तो ये जो है मतलब एक गलत भावना है, है? तो हम तथाकथित पंडितों के लिए ये नहीं कहते कि कृष्ण और उनके अंतरात्मा अलग अलग हैं। अब जब कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी शरण लो, मेरे भक्त बनो, तो वो जो टीकाकार हैं वो क्या लिखते हैं कि कृष्ण में और उनकी आत्मा में अंतर है, हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी, हमें कृष्ण की आत्मा की शरण लेनी। आप समझ रहे हैं? तो उनका जो है मतलब इस तरह का जो गलत भाव है। तो प्रभुपाद कहते हैं हम ऐसे तथाकथित पंडित की तरह ये नहीं कहते कि कृष्ण और उनके अंतरात्मा अलग अलग हैं, कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के इस ज्ञान को समझ पाना कठिन है, जब तक परंपरा में नहीं प्राप्त किया। ये गीता का उपदेश जैसे परंपरा में नहीं प्राप्त किया है उसके लिए कृष्ण का ज्ञान समझना कठिन है, समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और स्वामी कृष्ण के ज्ञान के बिना भगवद गीता पर भाष्य लिखते समय कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं। तो कितना कितना गलत भाव है कि गीता में से ही कृष्ण को ही निकाल रहे हैं। तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और स्वामी, ये तथाकथित है, तथाकथित स्वामी या दार्शनिक या उनको मार डालना चाहते हैं, कृष्ण को ही मार डालना चाहते हैं गीता में से। भगवद गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे प्रामाणिक लोगों से सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसे भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। कितना बड़ा नुकसान भगवद गीता के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मायावादी भाष सुन ले होए सर्वनाश। मायावादी भाष, तो मायावादी सिद्धांत जो है ये बड़ा खतरनाक सिद्धांत है और ऐसे मायावादियों ने गीता की टीकाएं लिखी हैं तो बिल्कुल उसको विकृत कर दिया है, गीता के संदेश को विकृत कर दिया है। आगे भगवद गीता थारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर अवतार लेते हैं। भगवद गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवद गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवद गीता का प्रवचन दिया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवद गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवद गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा। तो जहां जहां कृष्ण बोलते हैं तो गीता में क्या लिखा है, श्री भगवान वाच, क्या लिखा है, श्री भगवान वाच ना। तो कृष्ण जो है मतलब गीता में श्री भगवान माने गए हैं, भगवद गीता में श्री भगवान माने गए हैं। और हम कृष्ण को अगर भगवान ना माने और अपनी तरह माने कि मेरी और आपकी तरह हैं वो भी और उनके भी विचार में गलतियां हो सकती हैं या विचार बदल सकते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ, है ना। तो इसलिए इसको समझना है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। देखो कितना ये जो है दुख की बात है, कितना दुख की बात है कि भगवद गीता से लाभ उठाया है, क्या लाभ उठाया उन्होंने कि जीवन के सिद्धांतों को ठीक से ना समझने देने के लिए कि लोग जो है समझ ना पाए, सही सही अर्थ ना समझ पाए। तो भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि जीव नित्य दास है और कृष्ण जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, जब तक जीव कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा, है ना। ये समझना है। यहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा, मायावादी भी नहीं बचेगा। मायावादी सिद्धांत तो यह है कि भाई हम तो खुद ही भगवान बन जाएंगे और गीता की टीका भी लिख रहे हैं, है? तो उन्होंने गीता की टीका भी लिख दी और मान भी लिया कि हम भगवान बन जाएंगे, लेकिन वो भी फंसेंगे, किसमें फंसेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। आप सुन रहे, तो गीता में ऐसे मान लें कि नहीं हम भी भगवान बन जाएंगे, है? और हमें भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है और टीका भी लिख दी, तो उससे क्या रक्षा हो जाएगी उनकी,
नहीं
होगी, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे, है ना। ये ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। ये महान विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि भाई मान लो जैसा मान लो वैसा ही है। लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम जैसा मान लें वैसा ही है, तो हम मान लें कि हम भगवान हैं तो ठीक है हम भगवान हैं। क्या कैसे होता है, क्या अपने को भगवान मान लो तो भगवान बन गए, है ना। तो जो मायावादी हैं ये बहुत अपराधी हैं। विज्ञान में ऐसा नहीं होता, आप समझ रहे। ये भगवद गीता क्या है, महान विज्ञान है। विज्ञान ऐसा नहीं होता है कि जैसा मान लो वैसा ही है, ऐसा थोड़ी है। विज्ञान तो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और जो बात बताई जाती है वही माननी पड़ेगी, है? दूसरी तरह से आप नहीं कह सकते कि नहीं हमने ऐसा मान लिया। तो महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। तो कृष्ण भगवान है और हम भगवान नहीं है, हम कृष्ण के दास हैं। इसमें आप बदल नहीं सकते कुछ कि मान लो ऐसा मान लो वैसा मान लो, जैसा मान लो वैसे ही ठीक है, ऐसा नहीं है। भाई हमारी भावना तो यही है, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, हम तो इनको भगवान मानते, हम तो उनको भगवान मानते, है ना। तो उससे फायदा नहीं होगा। नहीं, अगर कृष्ण भगवान है तो कृष्ण को ही भगवान मानना होगा। आगे प्रबल हैं, अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता थरूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे। यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हमारा प्रयास सफल है, है ना। प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए है? तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे, है ना। इस तरह से प्रभुपाद ने बातें लिखी हैं। अब सुनिए कुछ घटनाएं हैं, सब लोग सुन रहे हैं। गीता के वितरण में जो है मतलब कई कई आश्चर्य होते हैं और लोग जो है कैसे भक्त बनते हैं उनको आप लोग सुनिए। एक भक्त था जो एयरपोर्ट में पुस्तकें बांटता था। तो एयरपोर्ट से जैसे लोग निकलते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो वो जो है खड़ा होकर के गीता दे रहा था। तो एक व्यक्ति जो है एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उस भक्त ने गीता दी, है ना। तो जब गीता दी तो उसको बड़ी अच्छी लगी देखने में ही। प्रभुपाद की पुस्तकें बड़ी अच्छी लगती हैं देखने में, तो देखने में बड़ी अच्छी लगी। तो उसने लिया तो उसने पूछा नहीं कितनी कीमत है, उसने $20 निकाल के दे दिए। $20 कितना होता है, हैं? 1200 रुपया, 1200 रुपया एक गीता का उसने कितना दे दिया, 1200 रुपया दे दिया, है ना। तो भक्त बड़ा खुश हो गया और उसने कहा और दूं। जिसने $20 दिए थे बोला और दूं, तो भक्त की थोड़े मना करेंगे, अच्छा है तो कृष्ण की सेवा में मिल जाए, और दे दो। तो $20 और दे दिए उसने, तो बड़ी खुशी की बात है। तो वो बोला और दूं। और दे दो, तो और दे दिए। इस तरह से उसने $20 करके उसने $200 दे दिए। $200 कितना हुआ, $200 है, 12,000 नहीं ज्यादा हुआ ना, 1200, $20 का तो 1200 हुआ, तो 12,000 हो गया, तो 12,000 दे दिया, है ना। और बहुत खुश होकर के गीता लेकर के अपने घर आया, है ना। अपनी पत्नी को दिखाया, देखो ये किताब मैं लेके आया हूँ, इसकी मैंने $200 दिए हैं। बहुत खुश होकर अपनी पत्नी से बताया और पत्नी इतनी गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा हुई, तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया। तो गीता जो है अपने घर में किसी अलमारी में रख दी और भूल गया उसको, उसने पढ़ी भी नहीं। इतना उसने पैसा दिया और पत्नी ने जब डांटा तो जो है बड़ा दुखी हो गया, गीता कहीं रख दी और भूल गया। और वहाँ तो क्या है कि तलाक बड़े जल्दी होते हैं, तलाक तो सामान्य बात होती है। तो कुछ दिनों के बाद जो है उसकी पत्नी तलाक देके चली गई उसको, अब वो घर में बेचारा अकेला। तो 10 साल के बाद जो है वो घर में अकेला था, तो वैसे सोचता है कि देखूं घर में कहाँ क्या रखा है। तो 10 साल के बाद ये किताब उसको फिर दिखाई दी गीता की, हाँ। तो उसने फिर जो है उसको याद आया, अरे ये तो वो गीता है जिसकी मैं $200 दिए थे, है ना। अब तो पत्नी चली गई, तो अब वो सोचता है कि मैं देखूं इसमें क्या लिखा है, आप समझे। और उसने खोला और उसको पढ़ा और अगले दिन वो फुल टाइम डिवोटी बन गया। अरे वो देखो मतलब कैसे आश्चर्य। तो मतलब ये भी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे गीता ले रहा है तो वो जो है मतलब पढ़ेगा नहीं, तो आप सोचिए अरे वो पढ़ेगा नहीं हम क्यों दें। ऐसा भी मत सोचिए कि किसी को अगर आप देते हैं और वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इसका विचार नहीं करना चाहिए, है ना। दो लोगों के घर में पहुंचाओ, है वे आज नहीं पढ़ेंगे ना? तो आप भी मत सोचिए कि आज वो नहीं पढ़ेंगे ना क्यों दें, वो महत्व नहीं समझते क्यों दें, हम क्यों दें, हम क्यों लोगों को जो है उनके लोगों के पास क्यों पहुंचाएं ये गीता, तो ऐसा नहीं है। गीता जो है ये प्रभुपाद की जो गीता है ये आप लोगों के पास पहुंचाइए। और प्रभुपाद तो एक थे, अकेले थे, उन्होंने पूरे संसार में इतना बड़ा काम किया है ना, उन्हीं प्रभुपाद को जो है आप पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये गीता में जो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं तो उनमें सीधे प्रभुपाद की वाणी है, तो प्रभुपाद का संग आप उनको दे रहे हैं। आज प्रवचन में जो भक्त प्रवचन दे रहे थे वो बता रहे थे कि उसी प्रकार से है जैसे किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के आप प्रभुपाद के सामने ले आए कि प्रभुपाद इसको आप प्रचार करिए। जब प्रभुपाद जीवित थे तो भक्त लोग जो है पकड़ पकड़ के लाते थे बड़े बड़े लोगों को कि प्रभुपाद प्रचार करें, और वो भक्त बनते थे है ना। तो भगवद गीता आपने जो दी है तो उसी प्रकार का काम आपने किया है कि उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के आप प्रभुपाद के पास ले आए कि प्रभुपाद इसको आप समझाइए, प्रचार करिए, और प्रभुपाद प्रचार करेंगे। तो कितना बड़ा काम है कि भगवद गीता आप जो है किसी के पास दे देते हैं है ना। अब प्रभुपाद जानते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक साल के बाद उसको प्रभुपाद कुछ बोलेंगे या 10 साल के बाद उसको कुछ बोलेंगे, वो प्रभुपाद का काम है। आपने अपना काम कर दिया ना, जैसे आपने बीज डाल दिया, आपने बीज डाल दिया तो कोई कोई बीज तो 20 साल के बाद फल देता है कि नहीं, कोई बीज 1 साल के बाद फल देता है, कोई 20 साल के बाद फल देता है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन आपने तो बीज डाल दिया ना, तो आपका काम तो पूरा हो गया कि आपने बीज डाल दिया है ना। तो इसी प्रकार से जो ग्रंथ हैं इनका जो है हमें वितरण करना चाहिए ना। जैसे कि पूरी दुनिया में जो साम्यवाद कैसे फैला, बहुत से देश हैं साम्यवादी बन गए ना, कम्युनिस्ट, कम्युनिज्म कैसे फैला, उन्होंने साहित्य का वितरण किया, उन्होंने साम्यवादी साहित्य का वितरण किया फ्री में लोगों को जो है, मतलब ये बांटे, पेपर बांटे, किताब बांटी, साम्यवादी पुस्तकें बांटी है ना। उससे फिर क्या हुआ कि वो कई देश साम्यवादी बन गए है ना। तो इसी प्रकार से अगर कृष्ण भावनामृत को आप फैलाना चाहते हैं तो ये जो साहित्य हो आप बांटिए तो लोग है ना। तो ऐसा नहीं सोचना भाई लोग गीता का महत्व नहीं समझते तो हम गीता ये नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इस गीता का महत्व लोग नहीं समझते हैं तो भी आप इनको दीजिए, किसी प्रकार से भी दीजिए, कुछ भी कह के दीजिए है ना। तो कोई सज्जन थे जो कि बोले भाई हमको तो जो है कथा वाली किताब चाहिए है? किसी भक्त ने कहा ये किताब लीजिए, बोले नहीं नहीं हमको तो कथा चाहिए कथा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये वही है जो आप चाहते हो। तो जब उसने पढ़ा तो यथारूप जो लिखा है ना उसको दिखाई दिया कथारूप। अरे ये कथारूप है भगवत गीता, कथारूप है ये, हाँ हाँ कथारूप है। तो इसके अंदर क्या है, बोले देखो श्लोक अनुवाद है फिर कथा। हर श्लोक में जो है अनुवाद को कथा लिखी, ओ ये कथा है। तो ले ली उसने गीता की पुस्तक ले ली। तो इस तरह से भी आप देते हैं, आगे चल करके वो ना पढ़े रख दे है ना, ये उसके पास आ गई तो ये बहुत बड़ा मतलब ये कार्य हो गया कि आगे आगे कब उसकी बुद्धि शुद्ध होगी और वो पढ़ेगा खोलेगा तो अलग बात है, या उसके घर में कोई और व्यक्ति पढ़ेगा खोलेगा है ना, किसी आत्मा को भगवान भेजेंगे उसके घर में है जो कि उसको पढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है हम नहीं जानते हैं, या आपने अपना काम कर दिया है ना। एक भक्त जो है पुस्तकों को बेच रहा था विदेश में तो भक्त लोग जो है मतलब बहुत समर्पित होते हैं ना, इन दिनों तो वहाँ मतलब यहाँ से बहुत कई गुना ठंड है। आप सोचिए कि जो तापमान होता है ना, तो जैसे घटता जाता है तापमान, ठंड बढ़ती जाती है, तो एक तापमान होता है 0 जिसमें कि पानी भी बर्फ बन जाए, ठीक है ना, वो 0 तापमान होता है। और वहां पर विदेशों में 0 से भी नीचे -20 तापमान, सोचिए 0 तापमान में तो पानी बर्फ बन जाता है और 0 से भी नीचे कितना -20 तापमान है, इतनी ठंड। उस ठंड में भी जो है भक्त लोग जो है किसान में बेचते हैं। तो एक भक्त था जो पुस्तकें बेच रहा था, है? तो एक गुंडा आया, वहां पर ऐसे बहुत से होते हैं क्योंकि व्यभिचार है, मांसाहार है, जुआ नशा है ना, दिमाग तो खराब होता है, तो बहुत से गुंडे भी होते हैं। तो एक गुंडा आया, उसने आक्रमण किया उस भक्त के ऊपर। तो जो भक्त था भागा बेचारा, अपनी रक्षा के लिए भागा। तो जय नरसिंह देव ऐसा बोलते बोलते वो जो एक दुकान में घुस गया अपनी रक्षा के लिए। तो दुकानदार ने जब देखा कि वो गुंडा मतलब इस भक्त के को जो है मारने के लिए आ रहा है, तो दुकानदार समझ गया कि स्थिति क्या है। तो तुरंत फोन किया पुलिस को, और वहाँ की पुलिस की जो मतलब सेवा बड़ी मतलब तुरंत होती है। तुरंत पुलिस आई और उस गुंडे को पकड़ करके ले गए, है ना। और जो भक्त था वो फिर से निकला, फिर अपने किताबें फिर से बेचने लगा। थोड़ी देर के बाद वो गुंडा उसी जगह पर आया, है? और उसके जो है पूरे शरीर में पट्टियां बंधी थी, पूरे शरीर में पट्टियां जो पुलिस ने मतलब मारा खूब, उसको खूब मारा, फिर मरहम पट्टी भी की तो पूरे शरीर में पट्टियां ही पट्टियां उसकी मतलब बंधी थी, है ना। अब ये जो भक्त था वो डर गया इसको देख के कि अब तो जो है ये मुझे और गुस्सा होगा, क्योंकि इसको मार पड़ गई बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो जो है बहुत मतलब वो सुधर गया था, और वो इस भक्त के सामने आया और बोला, कह रहे परचेज मन बुक, कि मैं क्या ये किताब ले सकता हूँ तुमसे, मुझे बेचो एक किताब, बेच सकते हो। तो उसने किताब बेची उसको। देखो मतलब भगवान ने कैसी रक्षा करी, है ना। अब विदेशों में जो है मतलब भक्त लोग जो है मतलब बड़े ऐसे खतरनाक स्थितियों में भी आ जाते हैं, लेकिन अपना काम बंद नहीं करते। अब देखो उसके ऊपर इतना बड़ा आक्रमण होने वाला था, है ना, और उसकी किसी प्रकार से रक्षा हो गई, लेकिन उसने फिर भी अपना काम फिर से शुरू कर दिया। वो तो फिर से दुकान के बाहर निकला और फिर किताबें बेचने लगा। नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या सोचता, अरे कोई गुंडा अभी फिर से आ सकता है, मुझे मार सकता है, पीट सकता है, हैं? अब तो मैं किताबें नहीं बेचूंगा, हैं? लेकिन देखो वो उसकी रक्षा जैसी भी हो गई, फिर से किताब बेचने लगा। और वही गुंडा जो है अब उससे किताब खरीदने के लिए आया उसके पास। तो ऐसी घटनाएं हैं इसमें। एक ईरान जो मुस्लिम कंट्री है ना, मुसलमान कंट्री है, तो वहां पर जो है एक भक्त पुस्तकें बेच रहा था। तो वहां तो बड़े कठोर नियम है सरकार के, बड़े कठोर नियम है। तो अगर वो अगर पकड़ लें, क्योंकि वहां तो मतलब प्रचार जो हो रहा है वो अंडरग्राउंड प्रचार हो रहा है, कि मतलब सरकार की जानकारी में मतलब ये बात ना आए, इस तरह से प्रचार करते हैं भक्त लोग, है ना। मतलब मंदिर ही बनाए हुए हैं तो अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं, कीर्तन की आवाज तक ना जाए बाहर, इतना मतलब उनको जो है सब वो आतंक है वहां पर। तो एक भक्त पकड़ा गया, वो तो बेचारे पकड़े जाएंगे ही जब करेंगे मैं पुस्तकें बारे, तो पुस्तकों का पूरा थैला उसने अपने लटकाए हुआ था और किताबें बेच रहा था, है ना। तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको, और पुलिस ने पकड़ लिया तो वो ले गए थाने के अंदर, वहाँ पुलिस थाने में। और थाने में जो है जो पुलिस का जो था इंस्पेक्टर जो भी हो, तो उसने जो है बंदूक लगाई उसकी छाती में, तो पिस्तौल से उसको मतलब उसकी हत्या करने के लिए तैयार हुए। तो वो जो है भक्त तो जो है मतलब अब तो उसने सोचा कि अब तो मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो आंखें बंद करके वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, वो कांपते हुए जो है अपना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहा है, है ना। तो बहुत देर हो गई उसको गोली नहीं लगी, तो उसने आंखें खोली हैं कि इतनी देर हो गई मुझे गोली लगी नहीं है, तो क्या हुआ। तो जब आंखें खोली तो वो इंस्पेक्टर बोला, गेट आउट, गुस्से में बोला, चले जाओ यहाँ से। तो उसको बड़ी जान बच गई, तो बड़ा खुश हुआ, अपना भागा लेकर के। तो फिर लौट करके आया कि मेरा थैला तो रह गया यहाँ पर, मेरा थैला रह गया है ना। तो थैला उसका वहां रखा था, किताबें भरी थी, है ना। तो इंस्पेक्टर बोला, नो दिस बुक्स आर फॉर मी, ये किताबें मेरे लिए हैं, जाओ यहां से। तो ऐसे ही मतलब भगवान रक्षा करते हैं और उसकी रक्षा भी हो गई। और वैसे तो क्या है कि वो मतलब गोली मार देते क्योंकि तो सरकार के जो है नियम के अनुसार बस ऐसे व्यक्ति की हत्या तुरंत कर दो, तो ऐसे कानून है। लेकिन उसकी रक्षा भी हो गई, उसका दिमाग, इंस्पेक्टर का दिमाग कैसे बदल गया, उसकी मतलब रक्षा हो गई। प्रभुपाद जो है, जो तात्पर्य उन्होंने दिए हैं गीता के तात्पर्य या श्रीमद् भागवत के तात्पर्य, तो जब प्रभुपाद बोलते थे ना, ये प्रभुपाद के बोले हुए हैं तात्पर्य, ये जो तात्पर्य लिखे हैं ये प्रभुपाद के द्वारा बोले हुए हैं। तो प्रभुपाद जब बोलते थे तो एक एक शब्द जो है वो रुक रुक करके बोलते थे। प्रभुपाद जब बोलते तो एक एक शब्द बहुत रुक रुक करके बोलते थे। तो किसी भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आप जो है इतने रुक रुक करके क्यों बोलते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि अगले 10,000 साल तक ये मेरी पुस्तकें मानव समाज का मार्गदर्शन करेंगी। समझे हरि बोल। तो मैं इसलिए रुक रुक करके बोलता हूँ कि ये जो मेरी पुस्तकें, जो मेरे तात्पर्य हैं, ये 10,000 साल तक मानव समाज का मार्गदर्शन करेंगी, है ना। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। और फिर कल जो है गीता का आविर्भाव दिवस है, तो गीता के 18वें अध्याय के अंत में भगवान क्या कहते हैं, अधेशते चायायमं धर्म्यं संवादं आवयो। हमारे धर्मिक संवाद का जो अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन तेन अहम् इष्टास्यामिति मे मति, उसके द्वारा मेरे ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा होगी, मतलब भगवान की पूजा। जैसे आप पूजा करते हैं राधा वल्लभ की, है ना, आरती उतारते हैं, तो एक तो इस तरह की पूजा भी है, दूसरी तरह की पूजा ये भी है। आप गीता का अध्ययन करते हैं, अगर आप भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, तो ये भी भगवान की पूजा है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा करेगा, तो ज्ञान यज्ञ है ना, कि आप समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवान की वाणी को, तो ये जो है ज्ञान यज्ञ है। फिर भगवान ये भी कहते हैं, श्रद्धावान अनुसूयस्य सुनयात अपि न रहा, जो श्रद्धा युक्त होकर के, यानी कृष्ण को मान करके कृष्ण भगवान है, और दोष ना माने कृष्ण का, कोई कृष्ण में कोई दोष ना देखे, और भगवान मान करके अगर वो सुने भी ना भी समझे, तो भी सो भी मुक्त है, वो भी पापों से मुक्त हो जाए। केवल इतना ही सोच करके कि कृष्ण ने जो है मतलब जो भी बातें कही है, उपदेश दिया है, ये जो है मतलब बहुत दिव्य है, और कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है, और बाकी कृष्ण भी ना समझे, तो इतने से भी वो पापों से मुक्त हो जाएगा। सो भी मुक्त है सुभान लोकान प्राप्त पुण्य कर्मणा, और पवित्र लोकों में जाएगा वो व्यक्ति, है ना। तो गीता पाठी ब्राह्मण की कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, तो उसको उसके गुरु ने आदेश दिया था कि रोज पूरी गीता का पाठ करो। अब वो गीता संस्कृत को ज्यादा नहीं जानता था, तो गीता नहीं समझता था, लेकिन गुरु के आदेश से वो पूरे श्लोकों का जो है पाठ करता था, 18 अध्याय का पाठ करता है। कल तो हम लोग पूरे 18 अध्याय का पाठ करेंगे, उसका नियम था रोज गीता के 18 अध्याय का पाठ करना। लेकिन अशुद्ध पाठ करता था, तो ये संस्कृत का ज्यादा अभ्यास नहीं था, तो अशुद्ध पाठ करता था, है? और अर्थ भी नहीं समझ पाता था, लेकिन पूरा 18 अध्याय पढ़ता था गीता के, है ना। उसको देख करके जो दर्शनार्थी होते थे, और श्रीरंगम में था वो, रंगनाथ जी के मंदिर में पाठ करता था, तो जितने दर्शनार्थी थे उसको देख करके घेर के खड़े हो जाते थे, और हंसी करते कि देखो इसको तो कुछ समझ आता नहीं, ना पढ़ना आता है, और दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करता था कि लोग हंस रहे हैं, बल्कि वो उसके आंखों से आंसू निकलते थे, और शरीर रोमांचित होता था, और कंठ जो है गदगद हो जाता था जब पाठ करता था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है वहां पर आ गए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि ये तो जो है मतलब बड़े उसमें जैसे मतलब कंपन हो रहा है उसके शरीर में, रोमांच हो रहा है, और कंठ गदगद हो रहा है, आंखों से रो रहा है, और पाठ कर रहा है गीता का, तो भगवान स्वयं आए उसके पास और पूछे उससे पूछते हैं कि गीता के किस अर्थ का जो है अनुसंधान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान स्वयं पूछते हैं उसे कि गीता के किस अर्थ का चिंतन करते हुए आपको इतना आनंद आ रहा है गीता पाठ करने में। तो बोला कि मैं तो अर्थ जानता नहीं गीता का, मैं तो केवल इतना ही सोचता हूँ कि कृष्ण भगवान है अभी कितने दयालु हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं और गीता का उपदेश दे रहे हैं, यही सोच करके मैं रो रहा हूँ है? और मैं गीता नहीं समझ सकता कि गीता है। तो भगवान चैतन्य ने उसको हृदय से लगा लिया और भगवान ने कहा कि तुम ही गीता का असली अर्थ जानते हो। देखो उसको भगवान का जो आलिंगन प्राप्त हो गया केवल इतने से। तो मतलब ये गीता को समझने की विधि ये है कि आप कृष्ण को भगवान समझिए, लेकिन अगर आप जो है बहुत विद्वान हैं और कृष्ण को भगवान नहीं समझते और गीता की टीका कर रहे हैं, सब बेकार है ना। इसलिए कृष्ण को भगवान समझना हाँ और कृष्ण का गुण मानना कि मतलब गीता का उपदेश जो दिया है इसमें कृष्ण का कितना बड़ा गुण है, कृष्ण की कितनी बड़ी दया है, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं ये भी कृष्ण का कितना हाँ कितनी बड़ी दया है, तो ये समझना ही मतलब अपने आप में इतना बड़ा गुण है कि भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे ऐसे। तो इस तरह की बातें हैं जो कि हमें समझना है। अब समय तो काफ़ी हो चुका है इसलिए प्रश्नोत्तर के लिए अब समय नहीं है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा वल्लभ की।